ओम शांति, ओम शांति। दो दिन में शायद ओम शांति का मंत्र तो आपको अवश्य पक्का हो गया होगा। शायद मम्मी का फोन आएगा तो भी आप हेलो के बदले ओम शांति बोल देंगे, ऐसा लगता है ना? क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ पर हम सभी बहुत ही गहराई तक कई इंटरेक्शन के साथ बहुत से अलग अलग व्यक्तित्वों के विचारों आगे बढ़ रहे हैं। और अब का ये सेशन है जो स्पिरिचुअलिटी को हमने समझा है उसको अपना के चलने वाले और उसे अपना कर जीवन को एक नया रंग भरने वाले ऐसे कुछ स्पिरिचुअल हीरोज से आपको मिलाने का वक्त है। तो सबसे पहले स्पिरिचुअल हीरोज अप्लाइंग योर स्पिरिचुअल पोटेंशियल टू द वर्ल्ड, इस सेशन में हम आमंत्रित करेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को अपने दिलोजान से अपनी मेहनत से बहुत ही विशेष रूप देने वाले ऐसे परमात्मा के भी प्यारे और समाज के लाडले ऐसे स्पिरिचुअल हीरोज जो अभी हमारे बीच में आएंगे, मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर भटनागर भाई जी, आप पधारें और हमारे इस यूथ रिट्रीट में आपको हम बेहद दिल से स्वागत करते हैं। डॉक्टर भटनागर जी, हम सभी अपना यूथ वाली ऊर्जा दिखाते रहेंगे। बीके पारी भाई, आपका इस मंच पर स्वागत है। कृष्णा बहन जी, सिस्टर कृष्णा, ब्रदर सूर्यमणि, बीके चंद्रेश भाई, ब्रदर शैलेंद्र जी और माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल से पधारे बीके ऋषि भाई, आप सभी का अभी की इस पैनल सेशन में, जो कि एक ग्रुप डिस्कशन के रूप में करना था लेकिन अभी हम इसको एक ग्रुप समझेंगे, एक ऐसा फैमिली गैदरिंग समझेंगे, एक ऐसी मीटिंग समझेंगे कि जहां पर इन सभी अपने अपने क्षेत्र के मानदाताओं से हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो डे टू डे लाइफ में और अपने कैरियर में हम अप्लाई करते हैं और उस अप्लाई करने में हमें कैसे सफलता मिलती है। सबसे पहले मिलेंगे हीरोज को हीरो बनाने वाले और हम सबको भी समस्त ऊर्जा देने वाले परमपिता परमात्मा से। तो हम आह्वान करेंगे प्यारे शिव बाबा का कि पावन यादों के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे सभी स्पिरिचुअल हीरोज को, आध्यात्मिक जगत के सितारों को इस मंच पर यूथ रिट्रीट की तरफ से, यूथ विंग की तरफ से वेलकम करना चाहेंगे। तो मैं बीके सिस्टर्स से निवेदन करती हूँ कि मंचासीन हमारे सभी स्पिरिचुअल हीरोज का वेलकम करेंगे। डॉक्टर भटनागर जी, ग्लोबल आई हॉस्पिटल आबू रोड के सीनियर सर्जन हैं आप। पास में खड़े हैं सूर्यमणि भाई जी, जो दिव्यांग सेवा में अपना समस्त समर्पित किए हुए हैं। जिनके आगे हैं पारी भाई, जो वाटर कंजर्वेशन में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। सबसे लास्ट में है जो शैलेंद्र भाई जी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर है ब्रह्मा कुमारी की सिक्योरिटी सर्विस विंग के। बीच में उपस्थित है बीके ऋषि भाई, आप भी ग्लोबल हॉस्पिटल के विलेज आउटरीच प्रोग्राम से जुड़े हैं, विभिन्न गतिविधियों से अपने युवा काल से समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। भ्राता चंद्रेश भाई जी, राज ऋषि विलेज प्रकल्प जिस पर आज आप बताएंगे, उसके एक फाउंडिंग मेंबर या एक सबसे पहले जिनके दिल में संकल्प था, और बहन कृष्णा जी जो कि ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन की तरफ से हमारे बीच में है, प्लीज आप सभी बैठिए। ये सभी ऐसे फील्ड से हमारे बीच में है जिनके लिए आप सभी से मिलना उतना ही गर्व का और उतना ही लाभकारी जरूर इन्हें लगा, इसलिए बहुत विशेष समय निकालकर हम सबके बीच में पधारे हैं। हम जानते हैं कि सफलता किसी एकमात्र संकल्प से नहीं मिलती, इत्तेफाक से नहीं मिलती, या कोई रेखा नहीं होती हाथों में सफलता की, लेकिन एक लंबे संघर्ष, एक लंबी कहानी होती है हर उस मंजिल को पाने के पीछे। और आज उसी कहानी से रूबरू होने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पुनः एक बार सभी स्पिरिचुअल हीरोज का और सभा में उपस्थित पूरे देश भर से आए हुए हमारे इन भविष्य के देश और दुनिया के कर्णधार, नीति निर्धारक और अलग अलग फील्ड के हीरोज का, आप सभी का भी स्वागत करती हूँ। एक बार अपने लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। आज हम एक जर्नी की ओर जा रहे हैं जो हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से भी कनेक्ट होती हुई नजर आएगी। बचपन जो अनेक सपनों से भरा होता है, युवावस्था पर आते आते नई उम्मीदें उसमें जुड़ जाती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उस छोटे से युवा दीपक को अंधेरा भी बहुत सारा दिखाई देता है। वो चाहता तो है कि वो स्वयं रोशन रहे, विश्व को भी कुछ रोशनी देके जाए, परंतु उसे अनेक चुनौतियां, अनेक दिक्कतें, अनेक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं समस्याओं के टाइम कोई तो बिखर जाता है, छोड़ देता है अपनी राहें, और कोई उन्हीं समस्याओं को इस तरह से लेता है जैसे किसी हीरे की पॉलिशिंग हो रही हो और वो निखर जाता है। ये हमारे ऊपर है कि हम बिखर जाते हैं या निखर जाते हैं। तो आज हमें ऐसे निखरे हुए, तराशे हुए हीरे अपने जीवन से कुछ विशेष बातें शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर भटनागर जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपसे आज की इस पैनल की शुरुआत करना चाहती हूँ। आपके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय दे दूँ। डॉक्टर वी सी भटनागर, आप MBBS, MS, DNB, DOMS इस तरह के अपने मेडिकल डिग्री से सुशोभित हैं। ग्लोबल आई हॉस्पिटल आबू रोड के आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, चीफ हैं, और आप 15 सालों से संपूर्ण रूप से हेडक्वार्टर के ये हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सेवाओं में अपने आप को लगाए हुए हैं। इससे पहले आपने 26 वर्षों तक इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दी, और वहां पर हम सब जानते हैं हमें अपनी सेना के लिए कितना गर्व होता है, हम सेनाओं की वजह से कितना अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। और उस फील्ड के बाद जब आपको 1983 में परमात्म ज्ञान मिला तो आपने एक और सेना को अपने जीवन में पाया, अपने जीवन में ऐसा एक फील्ड पाया कि जहां वो अपने पोटेंशियल को कैसे बढ़ा सकते हैं, और आपने आई सर्जरीज के इस भगीरथ कार्य को यहां आबू रोड हेडक्वार्टर में आकर के विशेष शुरू किया। आप वैसे दिल्ली से हैं और अभी आबू रोड स्थित ग्लोबल हाई हॉस्पिटल में आप क्या सेवाएं दे रहे हैं ये अपने स्वमुख से हमें बताएंगे। माइक वहीं दिया जाएगा प्लीज। जानना हमें ये है डॉक्टर साहब आपसे कि आपको ये जो फोर्स में रहना उसकी, और फोर्स के बाद में ये ईश्वरीय फोर्स में आगे बढ़ना, सेवाएं देना, उसकी प्रेरणा कैसे मिली, और क्या वो बिंदु रहा जिसने आपको इस सर्विस से जोड़ा?
ओम शांति। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे ओम शांति। सबसे पहले तो मैं यूथ विंग का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आपसे रूबरू होने का मौका दिया और गीता बहन जी और का भी विशेष रूप से धन्यवाद है। देखिए मैं आपके सामने आपके जैसा ही एक आत्मा हूं, केवल ईश्वर ने तराशा है मुझे और वो तराशने का बस मुझे गर्व है। आज से करीब 42 वर्ष पहले यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय में माउंट आबू में आना हुआ। मैं नया नया डॉक्टर बना था, 2-3 साल हुए थे डॉक्टर बनके, तो यहां आने का सौभाग्य मिला और बस उस दिन से जीवन बदल गया। एक पवित्र ऑर्गेनाइजेशन भारतीय वायुसेना को मैंने ज्वाइन किया एज आई स्पेशलिस्ट और वो जर्नी चलती रही, साथ में ईश्वरीय ज्ञान का भी समावेश उसमें होता रहा। और फिर जब यहां से रिक्वायरमेंट गई 2010 में कि यहां आवश्यकता है अबू रोड स्थित आई हॉस्पिटल को, तो भारतीय वायुसेना से रिजाइन करके या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके तब से यहीं पर समर्पित सेवाएं दे रहा हूं। मुझे जैसा गीता बहन ने बताया कि क्या प्रेरणा मिली, तो प्रेरणा यही मिली कि जब मैं सबसे पहले यहां आया माउंट आबू तो इतना स्नेह प्यार, ऐसी दुनिया दिखाई दी। हमारी बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी ने इतना स्नेह प्यार से हमारी पालना की कि लगा कि यही जीवन है, बाहर की दुनिया से ये बहुत श्रेष्ठ जीवन है। और उसी समय संकल्प कर लिया कि यही लाइफ हमें जीनी है। मैं एक बात और आपको बताऊं कि हम जीवन तो अपना बाहर की दुनिया में भी जीते हैं और यहां पर भी जीते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ ऐसा है कि जब मैं यहां आया माउंट आबू में 15 वर्ष पहले, उससे पहले मैं करीब 8-10 ऑपरेशन एक दिन में करता था आंखों के, और यहां आने के बाद, परमात्मा के घर में आने के बाद, परमात्मा का सानिध्य मिलने के बाद, अभी तो 40-50 ऑपरेशन यूं ही बैठे बिठाए हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। आध्यात्मिकता तो थी, लेकिन उस आध्यात्मिकता को यहां पर इतनी शक्ति मिली बाबा के, परमात्मा के घर में आने के बाद, कि बिना थके बिना रुके 50 ऑपरेशन हो जाते हैं और जो असिस्ट करने वाले लोग होते हैं कहते हैं सर आपको ब्रेक नहीं लेना है, तो कुछ नहीं पता चलता है। वही मैं आत्मा हूं, वही मैं पहले भी काम करती थी, लेकिन परमात्मा के सानिध्य से ये फर्क पड़ा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। थैंक यू, ओम शांति।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हम आपसे और भी जानना चाहेंगे बाद में, लेकिन हम एक बार सभी स्पिरिचुअल हीरोज से एक बार कनेक्ट होना चाहेंगे। मैं आह्वान करती हूं पारी भाई जो कि कटक से हैं, और आपने
चेन्नई से भी तमिलनाडु,
पारी भाई जो कि चेन्नई से हमारे बीच में है, और आपने जो काम किया है राजस्थान और उसमें भी ये वेस्टर्न राजस्थान में, जहां पर आप बैठे हैं, जहां आप सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग अपना गांव छोड़कर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई आदि में जाकर अपना व्यवसाय करते हैं, मारवाड़ी लोग। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की, बरसात की बहुत ज्यादा कमी है, और इसीलिए आपने जो क्षेत्र चुना है वाटर कंजर्वेशन, और उसमें भी ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय में बहुत से ऐसे प्लान है जिसको आप चलाते हैं। तो मैं आज जानना चाहूंगी कि आपको वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में ये कार्य जो आप कर रहे हैं उसकी प्रेरणा और उसकी शुरुआत कैसी रही?
ओम शांति। मैं ऑलरेडी नगर पालिका में 3 इयर्स वाटर सप्लाई में काम किए थे, इसलिए मुझे मालूम है पानी का कितना दिक्कत होती है। राजस्थान में तो और अधिक, जहाँ जैसलमेर बाड़मेर में जाएंगे ना, हर साल जो बरसात होता है उसको अपने घर के नीचे अंडरग्राउंड टैंक होता है उसमें जमा किया जाता है, सारा साल उसी पानी को यूज किया जाता है। इसलिए पानी का बहुत, एक एक बूंद का जो पानी का जो महत्व, जब पानी नहीं मिलता है ना तब मालूम पड़ता है। अभी यहाँ मधुबन या माउंट आबू हेडक्वार्टर्स जाने के बाद मैं वहाँ का जॉब रिजाइन करके सेम वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में ही हम सेवा कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ भी जो लोग आते हैं, 25,000 लोग आते हैं, जितने पानी हम यूज किया जाता है, फिर पानी यूज करने के बाद जो पानी बाहर जाता है ये भी बहुत बड़ी समस्या। आपका पानी मिलना भी बड़ी बात नहीं, जो पानी यूज करने के बाद जो पानी बाहर जाता है ना, वो भी सागर तरफ जाता। हम समझते हैं एक बाल्टी हम एक्स्ट्रा डालें, एक एक व्यक्ति ऐसे एक्स्ट्रा एक एक बाल्टी डालने के बाद क्या होता है, इतनी पानी आपको हजारों लीटर पानी बाहर आता है। पानी मिलना भी एक बड़ी समस्या है, पानी जो बाहर छोड़ना भी बहुत बड़ी समस्या है। आज के दिन रिसाइकल करके ही आपको पानी को रीयूज भी करना पड़ता है। इसलिए पानी का महत्व बहुत ऊंची है। पानी 5 तत्वों में मिगे अधिक विशेष तत्व है पानी है। पानी ही आपको 3 रूप में परिवर्तित होता है, सॉलिड लिक्विड वेपर फॉर्म में। क्लाइमेट चेंज में पहला प्रभाव पानी के ऊपर पड़ता है। आप देखना अभी भी अचानक सिक्किम एक जगह में क्लाउड बस्ट हुआ है ना, उसके कारण स्विट्जरलैंड में 2-4 दिन के पहले भी क्लाउड बस्ट हुआ, उसके कारण एक एक घाव बह के जाती है। ये सब क्लाइमेट चेंज में पहला प्रभाव, जब दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाते हैं उसका प्रभाव पहले पानी के ऊपर पड़ता है। इसलिए पानी के अद्भुत विशेष इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, थर्मल प्रॉपर्टी है, पानी एक अद्भुत तत्व है। इसके बारे में सोचेंगे ना बहुत डीप आपको अंदर तक ले जाएगा, कारण कि अपने शरीर भी 70% से पानी भरा हुआ है ना। इसलिए पानी अधि महत्व तत्व है। पानी का हर बूंद अमूल्य है, विशेष मूल्यवान है। इसलिए पानी को जमा करना हम सबका जिम्मेदारी है। पानी को प्रदूषित करना बहुत बड़ा पाप है, है ना। देखना धरती 70% पानी से ढका हुआ है, ऐसे 97% साल्टी वाटर है। ओनली 3% ऑफ वाटर इज अ पोर्टेबल वाटर, इसमें 2.2 आइस का बर्फ के रूप में 0.8% आपका जो है पानी, इसमें भी 0.7% भूजल ग्राउंड वाटर है ना, धरती के नीचे है। वो पानी भी जितना हम डिस्चार्ज करते हैं उतना पानी रिचार्ज ना होने के कारण वाटर टेबल दिन पर दिन बहुत नीचे चला गया। भारत सबसे अधिक ग्राउंड वाटर को हम एग्जॉस्ट करते हैं, वह रिचार्ज नहीं होता है। फिर बचाओ 1.1% जो जल हम नदी नाला है कुआं में जो देखा जाता है, वो 1% पानी को भी हम क्या करते हैं, प्रदूषित किया जाता है। जो सीवेज वाटर का, न्यूक्लियर वेस्ट का, फिजिकल पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, इस कई प्रकार के पोल्यूट किया जाता है। इसलिए आगे आपको सारा कारोबार पानी नहीं तो ना ऊर्जा है, पानी तो ना कृषि है, सारा आधार पानी का आधार से। इसलिए मुझे पानी के बारे कुछ करना है, पानी के प्रति बार बार संकल्प चला था, मेरा डिपार्टमेंट भी वही था, अभी यहां भी वही। इसलिए मैं अधिक अधिक पानी के सोचने के कारण पानी में एक वंडरफुल प्रदर्शनी बनाया गया है, जल जन अभियान के रूप में सारा भारत पर अभी भी चल रहा, जो भारत के जल शक्ति मंत्रालय के साथ जो अभियान चलती आ रही है। ओम शांति। थैंक यू।
बहुत अच्छा। जल है तो जीवन है, नारे तो हम कई बार लिख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम आज देखते हैं कि इतना ज्यादा इसका वेस्ट भी हो रहा है। तो पारी भाई, हम ये डिपार्टमेंट के द्वारा वेस्ट वाटर के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। हमारे हेडक्वार्टर में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट,
हेडक्वार्टर्स में जो वेस्ट वाटर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अपना सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में ट्रीट करके अगेन हम रिसाइकिल करके उसको ना गार्डन में यूज किया जाता है। फिर हम जो मानसरोवर नया कॉम्प्लेक्स बनाया, फ्लश टैंक के लिए भी हमने उसके लिए प्रोविजन रखा है, आपको जो पानी एक्स्ट्रा मिलेंगे तो उसको हम फ्लश टैंक में भी कारण किया। 70-50% ऑफ वाटर है ना, मोस्टली फ्लश टैंक से जाता है, बाथिंग में फ्लश में चले जाता है आपको। एक बार आप फ्लश दबाए माना 8 लीटर से 10 लीटर तक पानी जाता है, इसलिए हम रिसाइकिल करके गार्डनिंग में यूज किया जाता है, अपना एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, फिर पानी को फ्लश टैंक में भी यूज किया जाता है।
तो हम सब देखते हैं कि आप जब भी रूम में जाते हैं, आपके रूम में वॉशरूम में हर समय पानी अवेलेबल है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके आधार पे हम ये सब कुछ बहुत इजीली यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। तो आपकी ये मेहनत है। अभी हम एक और, हाँ थैंक यू, ताली जरूर बजानी चाहिए। अब हम नारी शक्ति के रूप में विराजमान हमारी कृष्णा बहन जो हैदराबाद से हैं, आप सबको शायद पता ही होगा कि ब्रह्मा कुमारी का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जिसकी बहुत सारी अचीवमेंट्स भी है, और आप इस समय प्रोडक्शन हेड है रेडियो मधुबन की। आबू रोड में रेडियो मधुबन के इस स्टेशन से आसपास के कई सारे गांव में लगातार एक अच्छा मैसेज, कई सारे सोशल कार्य हो रहे हैं, और एक समर्पित बहन होकर आपने अपनी अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद इस हेडक्वार्टर में रहकर और इस रेडियो मधुबन जैसे कार्यों को उठाया, न केवल उठाया लेकिन एक बहुत अच्छी बुलंदी तक पहुंचाया है। तो आप इस फील्ड में कैसे एंटर हुए और क्या आप उसमें कर पा रहे हैं? कृष्णा बहन,
ओम शांति। सबसे पहले यूथ विंग को ये मौका देने के लिए, हम एक दूसरे से मिलने का ये मुझे अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए धन्यवाद है। और रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से लाइसेंस प्राप्त हुआ एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है ब्रह्म कुमारी का, जो नीचे शांतिवन है वहाँ से ब्रॉडकास्टिंग होता है। पिछले 14 ईयर्स, इस जनवरी में हमने 14 ईयर्स पूरा किए हैं ब्रॉडकास्टिंग का। सो सामुदायिक रेडियो हम जब कहते हैं, सबसे पहली बात यही होती है कि समुदाय के लिए, और हमारा समुदाय कौन है जहाँ से हम प्रसारण करते हैं। और यहाँ पर आबू रोड में करीब 81 विलेजेस है आबू रोड ब्लॉक में, और 70% ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। और यहाँ पे भी आप देखते हैं कि जो लेबर काम करते हैं ये सभी आसपास के गांव से आने वाली लेबर है, लेकिन इन सभी की जो एक लाइफस्टाइल है उसमें से डेवलपमेंट, यानी कि जो हम कहते हैं कि भारत विकास की ओर जा रहा है, तो फिर विकास में ये सभी लोगों का योगदान है लेकिन इनकी विकास नहीं है। इन द सेंस ये लोग इलिटरेट हैं और नशे से ग्रसित है, पॉवर्टी में है, और ये मेन तीन चीजें हैं जिस कारण से उनके लाइफ में वो प्रोग्रेस नहीं देख पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज एक और है कि एक ट्रेडिशनल टैबू है, जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग कहे या फिर उनकी जो लाइफस्टाइल है जिसमें हम साइकोलॉजिकल चेंज, यानी कि उनकी जो थिंकिंग पैटर्न्स है उसको बदलाव करना है तो बहुत लंबा समय लगता है। और बाकी जो समस्याएं आप लोग शहरों में देखते हैं वही सब समस्याएं इनके पास भी हैं, बस वहां पर डेवलपमेंट और एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस बहुत सारा है स्पॉइल होने के लिए, और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है इसलिए वो स्पॉइल्ड है। सो क्या बोलते हैं, जरूरत दोनों जगह पे है। सो यहाँ पर बेसिकली मैं MBA इन फाइनेंस हूँ, और जब मैं नौकरी कर रही थी स्टॉक एक्सचेंज में, सो मुझे ये लगा कि ये सही जगह नहीं है मेरा काम करने का, और मुझे वो करना है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आए, कुछ अच्छा करना है। और जब मैं ऐसे ही एक इंटरनेशनल यूथ रिट्रीट हुआ था इसी ज्ञान सरोवर कैंपस में, जब मैं आई थी, मैं जब यूथ थी, अभी भी है, हम इतने बुजुर्ग नहीं है, बट मैं जब पढ़ाई कर रही थी, जब मैं आई थी तब मुझे ये प्रेरणा आया कि दिस इज द प्लेस वेयर आई कैन एक्सप्लोर माई सेल्फ एंड देन मैं अपनी जीवन को बेहतर बना सकती हूँ. सो दैट इज व्हेन द जर्नी स्टार्टेड इन माई सेल्फ टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. मतलब मैं अपनी जीवन को समुदाय की सेवा के लिए आध्यात्मिकता के साथ कैसे कर सकती हूँ. तो मैं थोड़ा थोड़ा सीखते गई, लेकिन उस समय तो रेडियो की लाइसेंस नहीं था जब हम आए थे. फिर मैं 2008 में यहाँ पर ब्रह्म कुमारी में समर्पित होने के लिए आई थी विद दैट डिसीजन. सो उस समय सबसे पहले मैंने प्रोडक्शन सीखा. एक इंग्लिश ऑनलाइन रेडियो चैनल चलता था यहाँ पर, उसके लिए प्रोडक्शन करने के लिए बुलाया था हमें, लेकिन हमको कुछ भी नहीं पता था. रेडियो की एक अच्छा श्रोता थे हम, लेकिन प्रोडक्शन करना क्या होता कुछ नहीं पता था. जब आए यहाँ पर हमें पहले ऑडियो एडिटिंग सिखाया, फिर द जर्नी स्टार्टेड. फिर 2011 में जब रेडियो मधुबन का लाइसेंस मिला संस्था को, तो फिर हमारी जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि अभी आपको थोड़ा अनुभव है इसमें रेडियो का प्रोग्राम्स बनाने का, तो आप अभी FM रेडियो चैनल पे शिफ्ट हो जाइए. सो आई सेड ओके. बचपन से हम रेडियो सुनते आए हैं और मीडिया का पैशन था, लेकिन हमारे घर में मीडिया के प्रति किसी को इंटरेस्ट नहीं था, तो वो नहीं चाहते थे कि हम मीडिया में काम करें. बट भगवान को पता था कि हम कैसे उस पर अच्छा काम कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने हमें वही फील्ड दिया है. और जब यहाँ पे आया, सामुदायिक रेडियो है, तो फिर फील्ड में जाना और उन लोगों की समस्याओं को समझना और उसके अनुसार प्रोग्राम डिजाइन करना, फिर ये पूरा ही नया कॉन्सेप्ट है. क्योंकि हम पहले सीखा ब्रह्म कुमारी की जो फिलॉसफी है उसको कैसे दुनिया तक पहुंचाए, अभी ये है कि इनकी सोशल डेवलपमेंट कैसे किया जाए. और मैं दक्षिण भारत से हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. अभी तो ठीक है, बोल पाती हूँ, बट उस समय मैं इतनी अच्छी हिंदी भी नहीं बोल पाती थी. और एक हिंदी रेडियो स्टेशन की प्रोडक्शन हेड बनना, सारे स्क्रिप्ट्स को वेट करना और प्रोग्राम्स डिजाइन करना और ब्रॉडकास्टिंग करना, तो इट्स एन एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट मेरे लिए, और सीखना भी बहुत था उसमें. बट विद द बिलीफ ऑफ द सीनियर्स और मुझे जो टीम मिली है उनकी जो सपोर्ट है, उस कारण से आज हम इतना दूर जर्नी कर पाए हैं. और लगभग हम 14 सालों में इतने सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स किए हैं. 24/7 ब्रॉडकास्ट करते हैं हम, आप लोग भी सुन सकते हैं. मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन में सुन सकते हैं, एंड्रॉयड और एप्पल में. और हम हर वो मुद्दा समाज का उसको कवर करने की कोशिश करते हैं. पूरे हफ्ते में करीब 32 प्रोग्राम चलते हैं, तो कोई ना कोई नई बात हम समाज को देने की कोशिश करते हैं और समुदाय की आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करते हैं उन तक. क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो ग्रासरूट लेवल पे जो लोग हैं उनकी आवाजें ना सुनी जाती है ना उनकी कवरेज होती है, बट सामुदायिक रेडियो ऐसी है जो ग्रासरूट लेवल पे अभी भी जो 50% लगभग भारत गांव में बसता है उनकी आवाजें और उनकी पहचान और उनकी जो बोली है या उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके जो टैलेंट है, उनको मंच बहुत कम मिलता है. तो उसी चीज के लिए हम सभी यहाँ पर काम करते हैं. तो पूरा 50 लोगों का हमारा टीम है, बट सिर्फ 7 लोग हैं जो हम यहाँ पे हेडक्वार्टर में रहते हुए पूरी स्टेशन को कोऑर्डिनेट करते हैं, बाकी लोग बाहर से हमें मदद करते हैं. थैंक यू.
और आपको ये जानकर जरूर खुशी होगी कि पिछले कई समय से भारत का नंबर 1 सामुदायिक रेडियो स्टेशन के रूप में मधुबन रेडियो को अवार्ड मिल रहा है. ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा संदेश भी लोग सुनना चाहते हैं. नहीं तो हम ये सोचते हैं कि जिसमें ग्लैमरस चीजें होती है, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें होती, शायद वही लोग सुनते हैं. लेकिन एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म से आपने जो मेहनत की है उससे आध्यात्मिक बातें, सोशल वेलफेयर की बातें आप समाज तक पहुंचा रही हैं. अभी हम एक अगले विशेष महानुभाव से आपको जोड़ना चाहते हैं, ब्रदर सूर्यमणि दास जी. जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है दिव्यांग सेवा विंग, कहते हैं कि हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आपका ये सूत्र रहा है जीवन का कि उन लोगों के लिए कुछ किया जाए जो किसी तरह से डिसेबल है, और वो भी क्या करें जिसकी प्रेरणा आप सूर्यमणि भाई बताएंगे कहां से आपको विशेष मिली। सूर्यमणि भाई कटक से हैं, आपने बहुत सारे अवार्ड्स दिव्यांग सेवा के तहत प्राप्त किए हैं, बीआर अंबेडकर नेशनल अवार्ड 2018, नेशनल सेवा रत्न अवार्ड 2019, मणिमणिका ओडिशा स्टेट अवार्ड, सनराइज पीस अवार्ड नागपुर, ये सब आपको प्राप्त है। आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद हेडक्वार्टर में सबसे पहले ये सेवाओं का बीज जो आपके मन में आपने डाला और जो सफलता को पाया, उसकी जर्नी पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और सबसे पहले उसकी प्रेरणा, सबसे पहले आपका वीडियो हम देखेंगे।
इतनी धूप तेरी उतनी ही मेरी, जितना चांद तेरा उतना ही मेरा।
बादल हो या आसमां, राहें हो या कारवां, एहसास हो ना अलगाव का, मिलके कहेंगे हम।
हमें हक है, हमें हक है,
हक है बराबरी का, हक है बराबरी का।
तेरे जैसा हूँ चाहे दिखलाऊ ना मैं,
रंग वही तारे मुझ में झलकाऊ ना मैं।
तेरे जैसा हूँ चाहे दिखलाऊ ना मैं, रंग वही सारे मुझ में झलकाऊ ना मैं।
अंधेरों को दीप में, आंसुओं को दीप में, हार को बदल के जीत में रख देंगे हम।
हमें हक है,
करता हुआ अंगार बन तू, आशा का दीप लिए चलता चल, मन में विश्वास लिए बढ़ता चल, कर खुद से वादा मजबूत ये इरादा, कर खुद से वादा मजबूत ये इरादा, अब स्वाभिमान से ही जिएंगे जीवन। भर उड़ान भर उड़ान, आसमान रहा गे निहार, सुन पुकार सुन पुकार, ये समय रहा गे पुकार सुन पुकार।
पाठ मिल पढ़ाए हम, दिल की आवाज को बुलंद कर भर ले, हाथों को अपने हिम्मत से भर ले तू, कदमों को मंजिल की ओर कर ले तू, कर खुद से वादा मजबूत ये इरादा, अब स्वाभिमान से ही जिएंगे जीवन।
एप्रिशिएबल जर्नी रही है, और आपने 7 जितनी बुक्स भी ब्रेल लिपि की आध्यात्मिक संदेश देने की तैयार की है, एग्जीबिशंस मॉडल्स तैयार किए हैं ब्रेल में, वो भी आप जरूर बताएं।
ओम शांति, आप सबको स्वागत है। मैं ये बताना चाहता हूं, करण करावन हार ईश्वर है, उसको जिसके द्वारा जो कार्य कराना है वो स्वयं करता भी है और कराता भी है। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, ना मुझे इसमें कोई नॉलेज था या कुछ इस प्रकार के मैं कोई स्वप्न देखा था कि मुझे इस प्रकार से करना है। 1990 23 फरवरी में मेरा ये ईश्वरीय जन्म हुआ, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में। एक सेकंड पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में पांव रखा, उसका एक सेकंड पहले का लाइफ बिल्कुल अलग था, और जैसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने पांव रखा, उसी समय से उसी सेकंड से मेरा लाइफ 180 डिग्री टिल्ट हो गई, दिशा एकदम चेंज हो गया। इसके पीछे आज मैं समझता हूं कि ऊपर में जो है वो परम शक्ति हम सबको एक अच्छे टाइम में एक अच्छा सोच देता है, हम सबको सुधारने के लिए एक टाइम आता है जहां वो प्रेरणा देता है, और वो प्रेरणा दे करके हमको अपने सही जगह पर पहुंचा देता है और एक उम्मीद रखता है। तो वो समय मुझे ये लाइफ मिला, और उसके आगे पुणे में जॉब था उसको मैंने रिजाइन किया, बिजनेस था उसको छोड़ के 1996 में ये हेडक्वार्टर में समर्पित हुआ। डे बाय डे अलग अलग प्रोजेक्ट करते करते सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट, लाइव टीवी ट्रांसमिशन एटसेट्रा, इस सारा प्रोग्राम करते करते मैं प्रोग्राम प्रोड्यूसर के रूप में पीएम टीवी में कार्य करता था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। उसी समय मुझे प्रेरणा ये मिला कि मैं 2008 में मुरली पढ़ रहा था, जो हम सवेरे जिसको डिस्कोर्स पढ़ते हैं ईश्वरीय महावाक्य, उसमें 4 सेंटेंस आया कि गूंगे बहरों के पास बच्चे जाते होंगे, जो देख नहीं पाते हैं वो सुन तो सकते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं इशारे से तो समझ सकते हैं, जिसका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है वो किसी ना किसी तरीके से उनको ईश्वरीय ज्ञान दिया जा सकता है और उनको उनके लाइफ में परिवर्तन लाया जा सकता है, स्वर्ग के लायक बनाया जा सकता है, साधारण से भी ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। यही सेंटेंस पढ़ते पढ़ते मैं वहां रह गया और आगे पढ़ नहीं पाया, जैसे कि एक पावर मुझे महसूस हुआ और प्रेरणा वहीं से मुझे मिला कि इस दिशाओं पर सेवा करनी है, शुरू करनी है। तो आज हम 17 साल इसके पीछे, ये सेवा के पीछे दे के आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। इन विजुअली इम्पेयर्ड जो है दृष्टिबाधितों के लिए अनेक प्रकार के टूल्स और टेक्निक्स विकसित किया गया है, जिसके द्वारा हम उनके पास सहज तरीके से उनके लाइफ में वैल्यूज उन सिखा सकते हैं और उनको स्पिरिचुअल टच दिया जा सकता है। उसमें से 3D मॉडल फाइबर मॉडल्स हैं जिसमें ब्रेल में लिखा गया है, जिस स्टेट में हम जाते हैं उस स्टेट का ब्रेल लिपि में उसको उपलब्ध कराया जाता है, और उसका ऑडियो भी फॉर्मेट में हम उनको देते हैं। साथ साथ हमारे पास 7 बुक्स ऐसे हैं स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए कोर्स बुक्स हैं, जिसमें दादी जानकी का, दीदी जयंती दीदी का, और हमारे 7 डेज कोर्स का ब्रेल लिपि में उपलब्ध किया गया है। साथ साथ कुछ ऐसे गेम्स और एक्टिविटीज के द्वारा हमको एम्पावर करते हैं, जो हियरिंग एम्पेयर्ड है, जो सुन नहीं पाते हैं बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए भी साइन लैंग्वेज में सारे कोर्स को साइन लैंग्वेज में करके वीडियो करके उसको हम अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। यूट्यूब चैनल आप खुद देख सकते हैं, जिसमें नियर अबाउट 900 वीडियोज है, रोज हम उसमें एक वीडियो अपलोड करते हैं, दिव्यांग सेवा माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज। ये हमारा यूट्यूब चैनल है दिव्यांग सेवा माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज। आपके संपर्क में अभी कोई भी अगर हियरिंग इम्पेयर्ड आते हैं तो सिर्फ आप उसको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए और बताइए, इसमें साइन लैंग्वेज वीडियोज मोर देन 400 है, वो देख करके वो सीख जाएंगे आपके जो सिखाना चाहते हो जो बताना चाहते हो। वो हर एक हम लेके वो टूल्स मोबाइल में वो है, सिर्फ उनको शेयर करना है। जो बुद्धि बाधित है, जिसका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, उनके लिए भी ड्राइंग बुक्स बना, एक्सरसाइज बुक्स बनाया गया है। वो ड्राइंग करते करते उनके सबकॉन्शियस माइंड को स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज चला जाता है, उनके जीवन में भी वो अच्छे से प्रोग्रेस करने लगते हैं। जो चीज समझ नहीं पाते थे वो धीरे धीरे उनका ब्रेन एक्टिव होने लगता है। तो इस प्रकार से ये तीन कैटेगरीज को लेकर के हमने सेवा कर रहे हैं। इस समय हम सरकार के साथ मिलकर के 15 स्टेट में ये सेवाएं कंप्लीट किए हैं। लगभग 800 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में हम विजिट किया है और उसमें से लगभग 1,00,000 से ज्यादा इस प्रकार के भाई और बहनों को एम्पावर किया गया है। और आगे लक्ष्य है कि भारत में कोई भी कोने में एक भी स्कूल नहीं रहे जहां ईश्वरीय संदेश कहो या उनके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए जो प्रयास है वो हम नहीं छोड़ेंगे। और ये 2-3 साल और हमको लगेगा, हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। इसमें आप सबका सहयोग और ब्लेसिंग्स और गुड विशेस चाहिए। धन्यवाद।
बहुत ही इंस्पिरेशनल चीजें हैं। आप में से जिनके भी दिलो दिमाग में कोई भी इस विषय पर फर्दर कुछ क्वेश्चन, कोई जानकारी पाने के लिए कोई बात आती है तो आपको समय मिलेगा, आप जरूर सामने आकर आपसे किसी से भी, जिन जिन के फील्ड की आप बातें सुन रहे हैं, आप अवश्य अधिक जानकारी के लिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सूर्यमणि भाई। अभी हम मिलेंगे भ्राता चंद्रेश भाई से, जो कि हमारी, जैसे आप यूथ विंग के बैनर तले यहां पर बैठे हैं, ऐसे हमारी एक कृषि एवं ग्राम विकास विंग भी है और उससे जुड़े हैं ब्रह्मा कुमार चंद्रेश भाई। आप मुंबई से हैं, बीएससी मैथमेटिक्स आपने किया, लंबे समय तक यहां पर अकाउंट डिपार्टमेंट में भी आपने विशिष्ट सेवाएं दी गॉडलीवुड स्टूडियो में, और बाद में आप शहर के रहवासी होते हुए एक लगाव, एक आकर्षण ये था कि गांव के लोगों के अंदर परिवर्तन आए और एक ऐसा विलेज जिसमें एक गांधी जी का जो स्वप्न था आत्मनिर्भर, वैसा बनाएं और उसमें सब कोई अपने आप को आत्मनिर्भर पाए, खुशहाल पाए। तो ये जो राज ऋषि सेवा प्रकल्प आपके द्वारा बनाया गया, तो इसके बारे में सबसे पहले हम एक वीडियो देखेंगे और फिर चंद्रेश भाई से सुनेंगे कि इस दिशा में आप क्या कर रहे हैं।
आज देश किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयास कर रहा है। खान पान आहार की शुद्धता को लेकर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें समाज को लगातार जागरूक करती रही, लेकिन गुणवत्तापूर्ण आहार के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। कुछ गांवों को प्रेरित करके ऐसे मॉडल खड़े किए जा सकते हैं।
तो संसार को बदलने के लिए संस्कार बदलने हैं, संस्कार को बदलने के लिए सोच को बदलना है, अर्थात हमें काम अपने मन पर करना होगा। लेकिन मन पर प्रभाव किसका पड़ता है? मन पर प्रभाव अन्न का पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन होता है और जैसा मन वैसा तन होता है। तो स्वर्णिम भारत बनाने के लिए हमें भारत के मन को सशक्त करना होगा और भारत के मन पर भारत के अन्न का असर पड़ता है और भारत का अन्न भारत के गांव से आता है। तो भारत को सशक्त बनाने के लिए शुरुआत भारत के गांव से होगी।
स्वच्छ गांव बनाने के प्रयास में इन गांवों में सफाई करने के साथ साथ बड़ी संख्या में कूड़ेदान वितरित किए गए तथा अति अस्वच्छ स्थानों को आकर्षक सेल्फी पॉइंट में बदला गया। घर घर कचरा संग्रहण और पृथकीकरण की व्यवस्था नियमित हर ग्राम में की जा रही है। गांवों को प्लास्टिक मुक्त और ODF प्लस बनाने के अभियान चलाए जा रहे हैं। हरित गांव बनाने के प्रयास में किसानों के खेतों में व्यावसायिक पौधे और अन्य फलदार वृक्ष लगाए गए एवं उनकी संरक्षण की जिम्मेदारी ग्रामीणों ने ली। साथ ही पर्यावरण दिवस से लेकर वर्षा ऋतु के अंत तक वृहद स्तर पर प्रत्येक गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया। ग्राम के प्रवेश द्वार पर ट्री गार्ड सहित अनेकों वृक्ष लगाए गए तथा प्रत्येक गांव में स्थानीय स्तर पर होने वाले फल सब्जियां एवं औषधीय वृक्षों का आदर्श खेत नमूना तैयार किया गया और एवोकाडो अनार लीची चेरी आम और स्ट्रॉबेरी जैसे फलदार पौधों का वितरण भी किसानों को किया गया। पर्याप्त जल संसाधन युक्त गांव बनाने के लक्ष्य से जल संचय करने के लिए सोक पिट्स मैजिक पिट्स बनाए गए तथा अधिकतम कृषकों के यहाँ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया गया। गांव में समस्त जल संसाधनों की सफाई की गई तथा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ में चेक डैम खेत तलावड़ी भी बनाए गए। महिला हितैषी गांव बनाने के लक्ष्य से गांव में महिला पंचायत का निर्माण स्वयं सहायता समूहों की स्थापना कपड़े की प्राकृतिक रंगाई और छपाई पर प्रशिक्षण सिलाई मशीनों की व्यवस्था मोमबत्ती निर्माण मिलेट्स के उत्पाद बनाना इत्यादि कार्यक्रम चलाए गए। महिलाओं के लिए विशेष पोषण वाटिका बनाने के प्रशिक्षण दिए गए ताकि अपने घरेलू आवश्यकताओं की सब्जियां मसाले औषधीय वनस्पति घर पर ही तैयार की जा सके। बाल हितैषी गांव बनाने की प्रक्रिया में खेल खेल में मूल्य आधारित शिक्षा इको क्लब एवं बाल पंचायत का गठन सरकारी विद्यालयों में कक्षाओं को डिजिटल बनाना स्कूलों में अध्ययन सामग्री और रचनात्मक सामग्री का वितरण इत्यादि के अलावा स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से शिक्षण संस्थानों का भौतिक विकास किया गया। स्वस्थ गांव बनाने की दिशा में योग स्वास्थ्य शिविर रक्तदान शिविर व्यसन मुक्ति शिविर कैंसर चेकअप ऑपरेशन थिएटर का निर्माण पशु चिकित्सालय की स्थापना मिलेट्स एवं जैविक अन्न को बढ़ावा देना आदि कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त गांव बनाने की प्रक्रिया में किसानों के लिए प्राकृतिक यौगिक कृषि संबंधी प्रशिक्षण देना कृषि उपकरण उपलब्ध कराना कृषि केंद्रों की स्थापना किसान संगठन बनाना इत्यादि कार्यक्रम चलाए गए। गांव में योगा मैट साड़ियां और कालीन बनाने जैसे छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा दिया गया। आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त गांव बनाने के लिए सुसज्जित पंचायत भवन का निर्माण तथा CSR की सहायता से आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र विद्यालय में सभागार खेल मैदान डाकघर सामुदायिक भवन सार्वजनिक शौचालयों और सड़कों आदि का निर्माण किया गया। सामाजिक सुरक्षित एवं न्याय संगत गांव बनाने के लक्ष्य से सभी ग्रामीणों को सरकारी अनुदान और योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। साथ ही ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा निःशुल्क राजयोग पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं तथा आध्यात्मिक मूल्यों को जागृत करने तथा आपसी समन्वय को बढ़ावा देने के लिए वार्ड सभाएं और रात्रि चौपालें आयोजित की जाती हैं। सुशासन युक्त गांव बनाने के लिए टीम वर्क टेक्नोलॉजी टाइमलाइन ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन के 5T के मूलभूत सिद्धांत को अपनाया गया है।
मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक एक सेवा केंद्र इस तरह का कुछ योजना बनाए ताकि फिर जो आजू बाजू वाले गांव है उन्होंने इस प्रकार का परिवर्तन हो सके वो राज ऋषि गांव बनने के लिए प्लान बना करके आगे बढ़े। तो भारत की सेवा तो अभी भी बहुत सुंदर चल रही है परंतु जो बाबा का लक्ष्य है कि हर आत्मा को खुद की पहचान बाप की पहचान और श्रेष्ठ कर्म कैसे हमारे हो दिव्य गुणों की धारणा किस तरह से हो आप सब निमित्त बन करके ये पान का बीरा उठाएंगे तो सारे भारत के गांव गांव में राज ऋषि गांव बन जाएगा।
चंद्रेश भाई जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि गाँव की समस्याएं कम हो सकती है और उसमें आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए भाई बहने कैसे काम कर पा रहे हैं, आप उस पर प्रकाश डालें।
ओम शांति। जैसे दीदी बता रहे थे कि हमारा जो लौकिक जो जीवन था उसमें हमने बीएससी मैथमेटिक्स में पढ़ाई की, बॉम्बे में पले बड़े, लेकिन प्रकृति से बहुत ही प्यार था। और जब 2013 में हम यहाँ माउंट आबू आए तो यहाँ पर गॉडलीवुड स्टूडियो है, वहाँ पर एज ए एडमिन हम अपनी सेवाएं दे रहे थे। 5 वर्षों तक हमने वहाँ पर अपनी सेवाएं दी, लेकिन हमें प्रकृति से बहुत ही प्यार था। और जब मेडिटेशन में बैठते थे तो अंदर से बार बार प्रेरणा आती थी कि आपको गांव की सेवा करनी है, प्रकृति की सेवा करनी है। लेकिन गॉडलीवुड स्टूडियो में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, वहां पर बैठ करके ये सेवाएं कैसे होगी, तो उसकी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन जो कहते हैं, जहां चाह होती है वहां राह होती है, तो अपने आप जब चिंतन करते थे, परमात्मा से बातें करते थे, तो उसमें से कुछ ऐसे लोग मिलने लगे जिन्होंने इस विजन को रास्ता दिखाया और हमें एक गांव मिला जो ये पूरा ही प्रोजेक्ट करने को तैयार हुआ। और गुजरात के कच्छ, हमारा जो नेटिव प्लेस है वो गुजरात से, गुजरात में कच्छ में ये गांव है, और ये गांव वाले सभी तैयार हुए और उन्होंने एक कार्यक्रम रखा और वो कार्यक्रम में सर्वांगीण विकास की शुरुआत के लिए ये कार्यक्रम था। उसमें हमारे आदरणीय राजू भाई जी जो हैं वो इस कार्यक्रम में पधारे थे। और वो संडे का दिन था और ईश्वरीय महावाक्य, हम उसको अव्यक्त मुरली कहते हैं, वो चले। और उसमें ये प्रेरणा मिली कि जैसे वर्तमान समय में हम सभी देख रहे हैं, जो दीदी पूछ रहे थे कि कैसे गांव की दिशा को क्या सच में बदला जा सकता है क्या, तो जो ईश्वरीय महावाक्य आए वो ये थे कि आप जैसे गवर्नमेंट कहती है ऐसे आप एक गांव को उठा करके एक सैंपल बना करके दिखाओ, जिससे सभी को प्रेरणा आए कि हाँ, अध्यात्म में वो शक्ति है, अध्यात्म में वो ताकत है कि जिससे जो संसार जैसा देखना चाहता है वैसा हो सकता है। तो वहीं से इस प्रोजेक्ट के लिए अंदर में एक दृढ़ता आई और लगा कि अगर भगवान कह रहे हैं तो ये जरूर होगा, और उसके ऊपर कार्य करना आरंभ किया। और कड़ियां से कड़ियां मिलते गई। शुरुआत में बहुत सभी को संकल्प होता था कि क्या ये सच में संभव है, ये जो इतना बड़ा विजन जो आपने अभी वीडियो के माध्यम से देखा, जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात जो हम कर रहे हैं, वास्तव में ये भारत सरकार का विजन है। भारत सरकार, वैसे यूनाइटेड नेशन ने 17 SDG गोल्स दिए हैं, उन्हीं 17 SDG गोल्स को भारत सरकार ने 9 थीम्स में कन्वर्ट किया है। उसको कहा जाता है लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और उन्हीं 9 थीम्स के ऊपर आधारित ये पूर्णतः ये प्रोजेक्ट है। और इसके साथ हमने मानवीय मूल्यों को जोड़ा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की कमी के कारण वो चीजें धरातल पे उस लेवल पे क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। तो जब इसके साथ अध्यात्म को जोड़ा गया और विशेष करके युवा शक्ति को इसके साथ हम जोड़ते हैं, इस कार्य में हम 4 बातों का विशेष ध्यान रखते हैं, 4 प्रकार के लोगों को इसके अंदर जोड़ते हैं, जिससे ये संभवता दिखती है। तो सबसे पहले हम जो ग्राम पंचायत है उसके जो सरपंच हैं, अगर वो ऐसे लीडर क्वालिटी के हों जिनके अंदर वो मोटिवेशन हो कि मुझे अपने गांव के लिए कुछ करना है, ये भाव जिनके अंदर हो, ऐसे हम सरपंचों को सबसे पहले चुनते हैं। उसके बाद में जो वहां के जो अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि आपने देखा कि इसमें सारे ही सारे मुद्दे कवर हो जाते हैं, जितने ही डेवलपमेंट के सेक्टर हैं वो सारे ही सेक्टर इसमें कवर होते हैं। तो हम जो अधिकारी जो सच में कुछ करना चाहते हैं, सभी सरकार के अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं, कईयों के अंदर ये भाव होता है कि हमें सच में मानवता की सेवा करनी है, तो उनमें से ऐसे जो सिलेक्टेड जो ऑफिसर्स हैं हम उनको सिलेक्ट करते हैं, अपने साथ लेते हैं। उसके साथ हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं, क्योंकि उनके भी ये मैंडेट में है कि हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को 5 गांवों को डेवलप करना है, तो हम, और क्योंकि उनके पास में NSS की स्टूडेंट्स होते हैं, NCC के स्टूडेंट्स होते हैं, तो और युवा शक्ति के अंदर वो ऊर्जा होती है जिसको हम इस प्रोजेक्ट में चैनलाइज करने का प्रयास करते हैं। और उसके साथ साथ वर्तमान समय में सरकार ने एक बहुत ही सुंदर नियम लाया है, उसको कहते हैं CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत हम कॉरपोरेट्स को इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि आपके आसपास के एरिया के डेवलपमेंट में आप हमें मदद करें, और वो डेवलपमेंट को कराने के लिए हम लोकल NGOs को अपने साथ लेते हैं। कॉरपोरेट को कहते हैं कि आप इन NGOs को, अच्छा जो NGO धरातल पे काम कर रहे हैं उनको हम कहते हैं कि आप इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, और आध्यात्मिक सपोर्ट हम लोकल ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र से उनको दिलाते हैं। और इस तरीके से जब प्रयास करते हैं तो आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हमें अभी राजस्थान के पास एक जाहोता गांव है, जयपुर के पास में राजस्थान में एक गांव मिला जिसके सरपंच यूथ हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने गांव के लिए, और उन्होंने ये फर्स्ट टर्म में सरपंच बने हैं, और उन्होंने पिछले 5 वर्षों में इतना सुंदर परिवर्तन किया है अपने गांव के अंदर। इन्हीं चारों बातों को हमने वहां पर समन्वय किया, और इस वर्ष जो है राजस्थान सरकार ने जाहोता ग्राम पंचायत को पूरे राजस्थान से 11,000 ग्राम पंचायतें उनमें से एक ही ग्राम पंचायत को चुना है, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए एज ए नॉमिनेट किया गया है इस ग्राम पंचायत को।
बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आजकल गांव से हम शहरों की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन गांव जहां से हमें अन्न मिलता है, सब कुछ मिलता है, खनिज भी मिलते हैं, उससे हम कट तो बिल्कुल नहीं सकते हैं। इसलिए यहां से कौन कौन है यहां पर जो गांव से जुड़े हुए हैं? ऐसा कोई भी नहीं है जो गांव से नहीं जुड़ा है, क्योंकि हमारे घर में अन्न कहां से आता है, सब्जियां कहां से आती है, तो हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो आपका ये संकल्प आप बहुत मेहनत के साथ कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक अलग फील्ड में, थोड़े समय से हमारे देश में एक लहर है ऑपरेशन सिंदूर, तो जिसमें हम आर्मी के जवानों को देख रहे हैं, हम हमारी बॉर्डर्स पे लगे हुए हमारे जवानों को जब देखते हैं तो हमारे अंदर भी जोश आ जाता है। तो ऐसे ही एक सिक्योरिटी सर्विस विंग है ब्रह्मा कुमारीज की, जिसके नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके शैलेंद्र भाई हमारे बीच में हैं, और वे बताएंगे। पिछले दिनों पे यहाँ पे रक्षा मंत्री जी भी आए, गृह मंत्री जी भी आए, और हेडक्वार्टर में आके उन्होंने खुद कहा कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा जो मेडिटेशन सीख रहे हैं हमारे जवान, उनके अंदर हमने बहुत परिवर्तन और बहुत अच्छा खुशी को देखा है। तो आप विस्तृत रूप से थोड़ा सा बता देंगे कि आप सिक्योरिटी सर्विस विंग्स में क्या सेवाएं देते हैं। शैलेंद्र भाई अभी इसी हेडक्वार्टर में, इसी कैंपस में रहते हैं, और आप बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करते हैं प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ आप 25 सालों से सिक्योरिटी सर्विसेज की सेवाएं करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कितने ऐसे फोर्स के जवानों तक पहुंचे हैं और उनकी लाइफ में आपने चेंज लाने के लिए क्या किया है। शैलेंद्र भाई।
थैंक यू दीदी। गुड इवनिंग एंड जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले तो मैं यूथ विंग के जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, दीदी हैं, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने सारे आप सामने देख रहे हैं, डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, और ये सच में ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का मौका होता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका होता है कि इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तो पहले तो यूथ विंग को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नेक्स्ट चीज सेना के बारे में बोला, यू नो, तो जैसे ही भारतीय सैनिक, चाहे वो हमारी आर्मी हो, पैरामिलिट्री हो, स्टेट पुलिस हो, जब हम उनके बारे में सोचते भी है ना, तो हमें गर्व महसूस होता है। आप मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे। और जो लोग थोड़ा सा सिक्योरिटी फील्ड में हैं और जो जियोलॉजिकली इंफॉर्मेशन जानते हैं, उनको पता है कि भारत की सेना विश्व में क्या अपना स्थान रखती है। जो डेडिकेशन हमारी सेना प्रस्तुत करती है, शायद ही दूसरे देश जिनको हम डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं उतना उनमें समर्पण भाव हो, ये हम बोल नहीं सकते। तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं ऐसी सेवा के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। आप सब यहाँ पे इन सब लोगों को देख रहे हैं, एक्चुअली सारे बीके हर एक विंग से जुड़े हुए हैं। कहने में आता है कि मैं सिक्योरिटी विंग से हूँ, लेकिन हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। पूरे समाज को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। नेक्स्ट, जैसे दीदी ने पूछा कि ये सेवाएं कैसे स्टार्ट हुई, तो इस साल मेरे को खुशी होती है बताते हुए कि हम 25वां अपना सिल्वर जुबली मना रहे हैं, जिसमें हम भारत की सेनाओं की सेवा की है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि भारत की सेना इतनी दुर्गम स्थानों पर रहती है। यू नो, मैं तो बहुत सारी जगह गया हूँ बिकॉज ऑफ ये सेवा के कारण। लेह लद्दाख से लेके आप समुन्दर के जो यू नो जहाँ सबमरीन्स होती हैं, दुर्गम स्थानों से लेके राजस्थान के रेगिस्तान, हर जगह पे। और जब आप उनके क्लोज जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो किस मिट्टी के बने हुए इंसान हैं। यू नो, जो चीज़ें हमें किताबों में पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, वो चीज़ उनके जीवन से दिखाई पड़ता है। तो इस साल हम अपना सिल्वर जुबली मना रहे हैं। दीदी ने जैसे बताया था कि अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी दोनों यहाँ पे आए, ये हमारे लिए गर्व की बात थी। और बिकॉज ऑफ उनको भी ये लगा कि ये भारत के सैनिकों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया था। तो सबसे पहले मैं एक इंट्रो वीडियो दिखाऊंगा जो हमने अमित शाह जी को दिखाया था।
21वीं सदी के मोड़ पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान में एक नया प्रभाग अस्तित्व में आया, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग। ये वर्ष 2001 था। इस विंग का उद्देश्य था हमारे वीर सुरक्षा कर्मी जो सीमाओं और सीमाओं के भीतर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्यरत हैं, उन्हें तनाव मुक्त करना। पहला कार्यक्रम सेना और नौसेना के कुछ अधिकारियों की सहभागिता के साथ आरम्भ हुआ। पहले दशक में मुख्यतः सशस्त्र सेनाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लेह, लद्दाख, कारगिल और उत्तर पूर्व जैसे दुर्गम क्षेत्र भी शामिल रहे। इस अवधि में नशा मुक्ति अभियानों का भी आयोजन हुआ। दूसरे दशक में फोकस स्थानांतरित हुआ केंद्रीय पुलिस संगठनों की ओर। SSW को BSF द्वारा इम्पैनल्ड किया गया। इसके पश्चात BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, NDRF, NSG जैसे बलों के मुख्यालयों के निर्देशानुसार विशेष तनाव मुक्त परियोजनाएं संचालित की गई। बदलते समय की जरूरतों के अनुसार विषयों का चयन किया गया, जैसे स्लीप मैनेजमेंट, मानसिक सशक्तिकरण, संबंधों में समरसता, चुनौतियों का प्रबंधन, ध्यान आदि। फिर आया कोरोना काल, पूरी दुनिया थम गई, लेकिन नहीं थमी SSW की सेवा। सिर्फ कार्यशैली बदली, ऑफलाइन से ऑनलाइन। इस नई विधि से सबसे अधिक लाभ राज्य पुलिस बलों को मिला। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कई राज्यों में कार अभियानों का आयोजन हुआ, जिनके माध्यम से हजारों सुरक्षा कर्मियों को सशक्त किया गया। वर्ष 2025 SSW की समर्पित और निस्वार्थ सेवा की यात्रा का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। सेवाएं दी, मेहनत की, त्याग किया, लेकिन कभी किसी कोर्स के लिए शुल्क नहीं लिया, क्योंकि यह निश्चय है कि जो राष्ट्र की सेवा करते हैं उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तेजी से बदलते समय में पुलिस बलों की चुनौतियां भी कई गुना बढ़ गई हैं। इस सिल्वर जुबली में SSW ने एक नया अभियान सुरक्षा बलों की सेवा में समर्पित किया है। स्वशक्तिकरण से राष्ट्र शक्तिकरण। हमें गर्व है कि हमारे साथ इस यात्रा में मार्गदर्शन और प्रेरणा देने हेतु माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब समय है कि हम नए जोश और ऊर्जा के साथ स्वयं को फिर से समर्पित करें। जय हिंद, जय भारत।
एक्चुअली इंट्रो वीडियो जो है वो अराउंड 7-8 मिनट का है, पर ये उन्होंने बोला था कि स्पेसिफिक 2 मिनट में बनाना है, तो ये जस्ट सार था। और मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि जब 2001 में एक कमाडोर आए थे, ऐसे ही यहाँ पे एजुकेशन कॉन्फ्रेंस था, और उन्होंने जब यहाँ के वातावरण को देखा, हमारे ब्रह्मा कुमारी के विचारों को सुना, मेडिटेशन को सुना, तो उन्होंने जो हमारे चेयरपर्सन है अशोक गवा जी, उनसे बोला कि समाज में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं वो हमारे जवान होते हैं, और आप लोगों ने उनके लिए कोई कोर्स नहीं बनाया है। तो एक ये थॉट था विंग को स्थापित होने का। एंड देन जगदीश भाई जी का बहुत फोकस था, उन्होंने खास ये था कि जवान एक लास्ट में ये देश को संभालने में, व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण रोल है, तो उस हिसाब से इस विंग की उद्घाटन हुआ था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पहली बार केवल 20 लोग आए थे, और आज ये हालत होती है कि लोग नॉमिनेशन पे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस से नॉमिनेशन पे आते हैं, और हमें उनको मना करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास 500 लोगों का एकोमोडेशन होता है, उस तरीके से। तो ये जो सेवाओं का इतना बड़ा दौर चला, इसमें सारा कमाल ब्रह्मा कुमारी बहनों का है, सच बता रहा हूं मैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो हमारे चेयरपर्सन है अशोक गाभा जी, आपको पता है कि आर्मी के जो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, सिविलियंस आप जा नहीं सकते हैं उसमें, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, आप विदाउट सोर्स तो अंदर घुस ही नहीं सकते हैं। तो जब पहले प्रोग्राम्स के लिए इनविटेशन देने जाते थे तो गेट पे उनको दे के आते थे और बोलते थे कि आप ये अपने सीईओ साहब को या ऑफिसर्स को या जो जो भी अधिकारी हैं आप उनको दे दीजिए। एक जमाना ये था, और आज ये होता है कि सिक्योरिटी सर्विसेज विंग इम्पैनल्ड है बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ। और इसी वर्ष जब राजनाथ सिंह आए तो एक ECHS जो वेटरन्स सेना के जो रिटायर और वेटरन लोग होते हैं उनके लिए पूरे भारतवर्ष में उनके 450 से जास्ती सेंटर्स हैं जहां पे उनके फ्री चेकअप, मेडिसिन वगैरह मिलती हैं। तो उस संगठन के साथ सिक्योरिटी सर्विसेज विंग और ब्रह्मा कुमारीज का MOU है, और वो चाहते हैं कि हमारी बहनें वहां पे जाके केवल दवाई नहीं लेकिन उनको काउंसलिंग दें, मेडिटेशन सिखाएं। तो ये सब कमाल है हमारी बहनों का, उनको उनका इतने प्यार से सेवा करने का, और बहुत सारी चीजें देखी हैं इसमें। तो थैंक यू ये सारे अनुभव।
अभी तक आप कितने फोर्सेस के जवानों तक अपनी सेवाएं पहुंचाई होंगी?
फोर्सेस आज भारत में ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है जिसकी हमने सेवा नहीं की हो। जैसे आर्म फोर्स बोलते हैं, इसमें जनरली आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और कोस्ट गार्ड आता है। पैरामिलिट्री होते हैं, इसमें जो केंद्रीय बल होते हैं उसमें 8 बल आते हैं, और जितने भी स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं और भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसमें सब टॉप लेवल तक के जो अधिकारी हैं वो इन सेवाओं से परिचित हैं। और आज भी शिवानी बहन तो बाबा ने ऐसे माइक बना दिया है, उनका अगर नाम आता है तो अभी प्रोग्राम दिल्ली में एक बन रहा है, जैसे ऐसे एक्चुअली ये प्लानिंग है, जो मानिक शाह हॉल है, लोग चाहते हैं कि दिल्ली में सारे फोर्स के हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे आके एक प्रोग्राम हो। तो दीदी आज भारत का कोई भी ऐसा सुरक्षा बल नहीं है जो ब्रह्मा कुमारी को नहीं जानता हो, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग को नहीं जानता हो।
बहुत अच्छा, जैसे कहा कि वो अपने परिवारों से दूर रहते हैं, इंटीरियर में सेवाएं देते हैं, इसलिए उनके लिए मेडिटेशन कितना उपयोगी हुआ है, और ये उन तक पहुंचाने का भगीरथ कार्य आपके द्वारा हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और अभी हम माउंट आबू स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल, जो कि अपने आप में एक यूनिक हॉस्पिटल है और आसपास के दूर दराज के गांव के लोगों के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं। हमारे बीच में ऋषिराज भाई बैठे हैं जो वहां के पीआरओ हैं, और आपके द्वारा हम शॉर्ट में थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि ग्लोबल हॉस्पिटल लोगों की सेवा में जो दे रहा है उसमें आप ये बताएं कि जो समर्पित स्टाफ है या जो स्टाफ स्पिरिचुअल है वो कैसे इस सेवा को ज्यादा बेहतर कर पा रहा है। वैसे तो बहुत सारे हॉस्पिटल है, लेकिन जो लोक कल्याण की सर्वांगी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो कैसे हम स्पिरिचुअलिटी के आधार पर कर पा रहे, वो हमारे युवाओं को बताएं। और फिर आप सबका टर्न होगा, जो कुछ पूछना चाहें आपको समय मिलेगा।
ओम शांति। सभी युवा साथियों को देखकर आज बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे भी बहुत युवा काल में ही, बाल्यकाल में ही इस परम पवित्र संस्था के साथ जुड़ने का चांस मिला, और वर्तमान समय पिछले 18 वर्षों से ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। तो ग्लोबल हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारीज का ही एक सोशियो स्पिरिचुअल सर्विस का एक प्रोजेक्ट है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट सिरोही है जिसमें माउंट आबू स्थित है, ये बहुत ही एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, जो भारत के 72 सबसे ज्यादा पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से एक माउंट आबू भी है, और इसमें 45% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है। तो इसी लक्ष्य से कि आसपास के आदिवासी क्षेत्रों की सेवाएं भी हो सके, और माउंट आबू जो हेडक्वार्टर्स है ब्रह्मा कुमारीज का, इंटरनेशनल हॉट का हेडक्वार्टर्स, तो वहां के भाई बहनों की भी सेवाएं हो सके, तो इसकी स्थापना की गई थी। और ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां पे हमारी एक होलिस्टिक अप्रोच रहती है, क्योंकि यहां पे मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ हम होम्योपैथी, आयुर्वेदा, मैग्नेटोथेरेपी, योगा थेरेपी, इन सब के ऊपर भी फोकस करते हैं, ताकि पेशेंट का सर्वांगीण रूप से उपचार किया जा सके। और इस हॉस्पिटल में हमारे लगभग 60% जो स्टाफ हैं, भाई बहने हैं, वो ब्रह्मा कुमारी के नियमित विद्यार्थी हैं, जो भारत के अलग अलग कोनों से अपनी जॉब छोड़ के इस ईश्वरीय कार्य को समझते हुए जिन्होंने अपना जीवन यहां पे समर्पित किया है। तो हॉस्पिटल तो वैसे दुनिया में बहुत हैं, परंतु ये हॉस्पिटल एक स्पिरिचुअल टच के साथ अपनी सेवाएं देने में विश्वास रखता है, और यहां के अधिकतर भाई बहने अपनी दिनचर्या की शुरुआत मेडिटेशन के साथ करते हैं, ताकि सारा दिन जो मरीज आते हैं उनको भी हम उसी कंपैशन के साथ, सहानुभूति के साथ, पेशेंस के साथ उनकी सेवा कर सकें। और इस हॉस्पिटल में हमारा ये लक्ष्य रहता है कि कोई भी पेशेंट, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से वो आए, अगर हमारे हॉस्पिटल में उसका इलाज संभव है, तो वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण वापस नहीं जाना चाहिए। तो हमारे हॉस्पिटल में लगभग 60% जो पेशेंट हैं उनका इलाज फ्री किया जाता है, जिसमें ना केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित भाई बहने, परंतु साथ साथ कोई भी धर्म में जो साधु संत महात्माएं हैं, जैन मुनि हैं, नंस हैं, जो पूरी तरह से ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं, और साथ ही जो बहुत ही गरीब तबके के भाई बहने हैं आसपास के आदिवासी क्षेत्रों से जो आते हैं, उनका भी निशुल्क इलाज किया जाता है। और भले ही निशुल्क इलाज किया जाए, हमारी कोशिश ये रहती है कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और हॉस्पिटल में ये भी कोशिश की जाती है कि यहां पे मरीजों को मेडिकेशन के साथ साथ मेडिटेशन भी सिखाया जाए, और हमारे हॉस्पिटल में एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग डिपार्टमेंट बोलते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के समय में 75% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हैं, जो हमारे मन से, हमारे मन के तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण हमारे जीवन में आ रही हैं। तो वहां पे हमारे ट्रेंड काउंसलर हैं जो मरीजों को स्पिरिचुअल काउंसलिंग प्रदान करते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हमारे हॉस्पिटल में 1998 में स्टार्ट की गई थी, जिसको नाम दिया गया था माउंट अबू हेल्दी हार्ट ट्रायल, जिसमें डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और राज्यों के द्वारा ब्लॉकेजेस खोले जाते थे हार्ट के। और ये स्टडी इतनी सक्सेसफुल रही कि उस समय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, जो उस समय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे इंडियन गवर्नमेंट के, वो यहां पे आए थे, उनको ये प्रोग्राम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसको डीआरडीओ के साथ एफिलिएट करवा दिया। और तब से ये प्रोग्राम जो है लगातार चल रहा है। और इसमें 4000 से ज्यादा जो डॉक्यूमेंटेड ऐसे मरीज हैं जिनको बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने वो प्रोग्राम अटेंड किया, उसकी रूट्स को समझा कि किस वजह से हमें ये बीमारी हुई है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, अपनी डाइट को चेंज किया, राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 4000 ऐसे डॉक्यूमेंटेड पेशेंट हैं जिनके वो ब्लॉकेजेस बिल्कुल क्लियर हो गए बिना किसी सर्जरी के। तो हम सब देखते हैं कि ये जो राजयोगा मेडिटेशन है, ये वर्तमान समय में इसकी बहुत जरूरत है, ना केवल मेडिकल फील्ड में और ना केवल एजेड लोगों के लिए, लेकिन यूथ के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिनों दिन हम देख रहे हैं दुनिया में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए यूथ को तो सबसे ज्यादा इस राजयोग मेडिटेशन की जरूरत है। तो ये हॉस्पिटल शुरुआत तो इसकी एक बहुत छोटे रूप में हुई थी, लेकिन आज ये एक मल्टी स्पेशलिटी सेवाएं दे रहा है, सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी दे रहा है। और आसपास में लगभग 100 ऐसे गांव हैं जहां पे हमारे मोबाइल क्लिनिक्स डेली जाते हैं, 3 मोबाइल क्लिनिक। और वहां पे हमने लोकल ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनको हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग दी है, और वहां से जो मोबाइल क्लिनिक में जो टीम जाती है डॉक्टर्स की, वहां पे उनको वहीं पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है, तो उनको हमारी बसेस वहां से लेके आती हैं, उनके टेस्ट होते हैं, उनको एडमिट भी किया जाता है। तो इस तरह से ये हॉस्पिटल प्रतिवर्ष लगभग 1,00,000 से ज्यादा मरीजों को ओपीडी सेवाएं, कंसल्टेशन, स्पेशल कंसल्टेशन सेवाएं देता है, और लगभग 5,000 के मरीज जो भर्ती होके यहां पे इलाज लेते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि माउंट आबू एक दुर्गम स्थान है, हम एक हिल टॉप पे बैठे हैं, बहुत से ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं, तो लेकिन जो डेडिकेटेड हमारे बीके भाई बहने हैं इतने वर्षों से वहां डेडिकेटेड रूप में सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए हॉस्पिटल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और हमारी अभी आबू रोड में भी ब्रांचेस, आई हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, एक नर्सिंग स्कूल है, नर्सिंग कॉलेज है, एक सीनियर सिटीजन होम है, और एक अभी बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आने वाला है। और साथ में ही जो मेडिकल विंग है ब्रह्मा कुमारीज का, क्योंकि हॉस्पिटल और ब्रह्मा कुमारीज का जो मेडिकल विंग है वो इंटरकनेक्टेड है, तो भारत का जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने ऑफिशियल MOU हमारे मेडिकल विंग के साथ किया है। और पूरे भारतवर्ष में हम जो है डी एडिक्शन के ऊपर बहुत कार्य कर रहे हैं, और अभी लाखों की तादाद में ऐसे भाई बहने हैं जो अभी इस मेडिकल विंग की सेवाओं से प्रेरित होकर नशा मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा ले चुके हैं। ओम शांति।
थैंक यू। वैसे तो हर हॉस्पिटल चाहता है कि जो मेरे पास मरीज आया है वो बार बार आता रहे, लेकिन ग्लोबल हॉस्पिटल ये चाहता है कि वो मरीज रहे ही नहीं, इसलिए डी एडिक्शन हो या टेंशन फ्री लाइफ हो उस पर भी काम किया जाता है। ये एक लंबी सोच है और बहुत बड़ा विस्तार है, और इसीलिए आपको और आपकी पूरी टीम को थैंक्स है। अभी आप में से कोई इनके किसी भी विषय पर कुछ अपना पूछना चाहें तो प्लीज जल्दी से आगे आएं। तब तक मैं भटनागर जी से एक बात पूछूंगी कि एज एन डॉक्टर आप व्यस्त भी रहते हैं और आप पूरी टीम को लेके चलते हैं, बहुत आपके ऊपर कार्य का दबाव होता है, बहुत सारे काम करते हैं, तो उसको करते हुए भी आप मेडिटेशन करना या अपने स्थिति को अच्छा रखना, उसके लिए बैलेंस के लिए आप क्या करते हैं?
ओम शांति। आज इतने युवाओं को अपने सामने बैठा देख के मुझे वो समय याद आता है जब आज से कुछ 43 साल पहले मैं भी इसी एज ग्रुप का था, नया नया डॉक्टर था, और उस स्थिति में मुझे परमात्मा ने पकड़ लिया और मेरे जीवन को एक सही दिशा में चैनलाइज किया। वरना उस एज में तो कुछ भी भटकाव हो सकता है। तो आप ईश्वरीय साथ से अपना जीवन इतना उत्कृष्ट बना सकते हैं जिसकी अभी आप कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे। जैसा दीदी ने कहा कि मैं इतना व्यस्त रहता हूं, तो व्यस्तता तो ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन लगता नहीं कि हम व्यस्त रहते हैं, क्योंकि सब काम सहजता से परमात्मा पूरे करा देते हैं। और मेडिटेशन और योग के लिए तो समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो एक जीवन का हिस्सा बन गया है, और उसी से शक्ति मिलती है, आत्मा को बल मिलता है, और काम चुटकियों में पूरे होते चले जाते हैं। तो ऐसा कोई विशेष उसके लिए समय निकालना नहीं पड़ता। हाँ, हर समय ये ध्यान रहता है कि हम ईश्वर की संतान हैं और इस समाज के लिए जरूर अच्छे से अच्छे कर्म करके जाने हैं और अपना जीवन और श्रेष्ठ बनाना है। हमारे जो भी मरीज आए उनके साथ बहुत समानता से व्यवहार करते हुए उनके दुख दर्द को दूर करना है। इसी में सारा समय निकल जाता है और परमात्मा की शक्तियां साथ में रहती हैं तो कुछ पता भी नहीं चलता है। ओम शांति।
थैंक यू। ताली तो बनती है, नहीं तो हम लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं, इसलिए वो स्ट्रेस में रहते हैं, इसलिए उनको गुस्सा आता है, इसलिए वो दबाव महसूस करते हैं, लेकिन ये जीवन शैली है। यस, आप कुछ पूछना।
ओम शांति। ओम शांति। मैं नीरज भाई हूँ, नोएडा एक्सटेंशन से आया हूँ, और सबसे पहले मैं यूथ विंग का दिल से बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि सम्मानीय मंच से हमें रूबरू कराने का मौका दिया। जोरदार तालियां एक बार यूथ विंग के लिए। वैसे तो सभी के वक्तव्य मैंने सुने और सभी से बहुत कुछ सीखने को मिला, पर मेरा क्वेश्चन स्पेशली सूर्यमणि भाई साहब से है। तो जब मैं नोएडा एक्सटेंशन में था तो कुछ दिन पहले मैं अपनी बच्चों की बुक्स को रीअरेंज कर रहा था, तो आपकी एक बुक मैं कभी ले गया हूँगा, वो दिव्यांग चित्रकला का आपने जो बनाया है, तो उसको मैंने पूरा देखा और वाकई उस बुक की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी बुक इन्होंने लिखी। और मुझे नहीं याद है कि वो मैं कब कहां से मैंने खरीदी, शायद पांडव भवन से मैंने ली होगी, और मेरे मन में विचार आया कि इनके लेखक कौन है, तो मैंने उसमें देखा उसमें एक नाम था सूर्यमणि भाई जी। तो मेरे मन में विचार आया कि जब भी मैं ज्ञान सरोवर जाऊंगा तो एक बार सूर्यमणि भाई साहब से मिल के आऊंगा। ये बात हो गई कुछ दिन पुरानी, अब मैं इस बात को भूल गया, लेकिन जब मैं यहां पे आके बैठा तो मैंने देखा ये तो सूर्यमणि भाई साहब हैं, और वो बुक का मेरे अंदर एक मन में आया कि जो मैंने संकल्प भाई साहब से मिलने का लिया था वो मेरा पूरा हुआ। अब मेरा क्वेश्चन, वो बुक तो मैं अपने बच्चों के लिए ले गया था, ऐसी सिंपल एक चित्रकला की जैसी कोई बुक होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वाकई कि वो एक दिव्यांग लोगों के लिए बनाई गई बुक है, वो भी जिनका बुद्धि विकास होना है।
जरा जल्दी से प्रश्न पूछिए।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ऑटिज्म के जो बच्चे काफी जिनकी बुद्धि में थोड़ा सा कमी होती है, क्या उनके लिए भी वो बुक है?
एक्चुअली मानसिक जो होते हैं अविकसित होते हैं उनमें कई प्रकार के होते हैं डिसेबिलिटीज। जब हम जाते हैं इसका प्रोग्राम्स करने स्कूल्स को जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को जाते हैं, हम उन ऑर्गेनाइजेशन से वो बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जो ड्राइंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनको कुछ हम अगर गाइड करते हैं वो और उसको अच्छा कर सकते हैं। परंतु ऑटिज्म बच्चे भी इसके अच्छे हैं जो ये ड्राइंग और इसमें अच्छा रुचि रखते हैं।
ओके, धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू सो मच।
बस एक प्रश्न।
यस।
ओम शांति। मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। मेरा सवाल चंद्रेश भाई जी से है। जैसे आपने ऋषिग्राम जैसी सेवाएं ग्राम के लिए कर रहे, तो मेरा सवाल इसके ही रिलेटेड है कि अगर मैं भी सोशल एक्टिविटीज के बारे में गांव से जुड़ा रहता हूँ, तो क्या मेरे गांव को इस एक्टिविटी में या इस प्रोग्राम में सहभागी करवाने के लिए मुझे कौन सी प्रक्रिया से जाना पड़ेगा और उसमें कैसे सहभागी करवा सकते हैं?
आप यहाँ से उठ के जस्ट मिल लेना, क्योंकि समय भी पूरा हो रहा है। बहुत
ठीक, सही,
बहुत से प्रकल्प है जिससे आप जुड़ पाएंगे, आप एक लाइन में बताएं।
जरूर, तो बहुत अच्छा थॉट है आपका, और हमें आपके जैसे ही नेचुरल लीडर्स की आवश्यकता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपके नजदीक में ब्रह्मा कुमारी का सेवा केंद्र का होना, तो उसी से हम बाकी की एक्टिविटीज को आगे ले जाएंगे। आप चाहिए तो प्रोग्राम के बाद हमसे मिलिए हम, और मैं इसके साथ में हमारी जो यूथ विंग है उसको सच्चे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो ये यूनिक है, अभी तक इस तरीके की एक्टिविटीज जनरली नहीं होती थी। आपने ये जो नया इनिशिएटिव लिया है, सभी लोगों को, सभी वैरायटी के जो अनुभवी लोगों को आपने एक मंच पर लाया है, और क्योंकि ये सर्वांगीण विकास होना है तो उसमें सभी का रोल है, तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज की भी विंग्स को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद है। ओम शांति।
हमारे ये सभी स्पिरिचुअल हीरोज को हम और भी समय दे सकते थे और इनके द्वारा हम और भी जानकारी ले सकते थे, लेकिन समय की सुइयां हमें इशारा दे रही हैं और समय पर चलना भी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन और गुण है। तो हम बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि यूथ रिट्रीट के अंदर आप पधारे और अपने प्रोजेक्ट और अपने पर्सनल लाइफ को आपने कहाँ लगाया है, उन स्किल्स को हमारे युवा भाई बहनों ने जाना। आप सबको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो मैं हमारे भ्राता जी, भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी, वाइस चेयरपर्सन ऑफ यूथ विंग, मंच पे बुलाना चाहती हूँ, और इन सभी को एक थैंक यू का छोटा सा कार्ड भाई साहब देंगे। और भाई साहब का ही सेशन भी है यहाँ पर, तो हम एक बार खड़े होकर भाई साहब का भी वेलकम करते हैं। एक परम योगी है आप, और बहुत ही शांत और शीतल वाणी से अभी आपको लाभान्वित करने वाले हैं। तो एक हमने कार्ड बनाया है जिसके अंदर सीड्स डाले हुए हैं, ये कार्ड को आप अपने घर में गमले में डाल दीजिएगा तो इसमें से तुलसी उगेगा, इसलिए ये स्पेशल कार्ड है जो एनवायरमेंट डे पर हमने बनाया था, तो आपको भाई साहब के द्वारा दिया जा रहा है। यूथ विंग की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी आपके बारे में जानना चाहेंगे वो सर्च भी कर सकते हैं, आप सबको नेट पे आप देख पाएंगे और उनके वेबसाइट पर आप पढ़ पाएंगे। तो हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और सभी स्पिरिचुअल हीरोज को वेव्स करके यहाँ से हम विदाई तो नहीं कहते, बहुत बहुत आपके कार्यों के लिए हम बधाई देते हैं कि आप ऐसे ही अनेकों के इंस्पिरेशन बने और अनेक जरूरतमंदों की सेवा करते रहें, आपकी लाइफ सबके लिए एग्जाम्पल बने, ऐसी हमारी परमात्मा से और आप सबकी तरफ से हम बहुत बहुत इनको थैंक्स और दुआएं देते हैं। थैंक यू सो मच।